स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ इकबाल अहमद। तारीख 10 मार्च और दिन गुरुवार। मैसिडोनिया ने बंद की अपनी सीमा, हजारों शरणार्थी फंसे।
Yesterday we had again a 2 years old girl who came to our clinic who was in
Pakistan. प्रशासित कश्मीर में आजादी समर्थक किताबों पर लगा प्रतिबंध। बैंकों के अरबों रुपयों के कर्जदार विजय माल्या देश से फरार। बीबीसी न्यूज स्कूल रिपोर्ट दिवस के मौके पर सुनेंगे बच्चों से एक रिपोर्ट।
मैं पूर्वी दिल्ली के पुश्ता रोड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर काफी सारी वाहनों की आवाजाही हो रही है और आवाजाही की वजह से प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण की वजह से आसमान।
अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। यूरोपीय देश मैसेडोनिया ने कहा है कि वो प्रवासियों को अपनी सीमा से होकर ग्रीस नहीं जाने देगा। इससे बाल्कन में उत्तर की ओर प्रवासी नहीं बढ़ सकेंगे। मैसेडोनिया के इस फैसले से एक दिन पहले ही स्लोवेनिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं। क्रोशिया और सर्बिया ने तब कहा था कि वो भी अपनी सीमाएं बंद करेंगे। मैसेडोनिया के फैसले की वजह से करीब 13,000 लोग ग्रीस की सीमा पर फंस गए हैं। लंदन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रमुख कमांडर उमर अल शीशानी अमरीकी हवाई हमले में बच गए हैं और उनका आईएस के नियंत्रण वाले शहर रक्का में इलाज चल रहा है। इससे पहले पेंटागन ने दावा किया था कि शीशानी मारे गए हैं। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति लुई इनाशियो लुला द सिल्वा के खिलाफ हवाला और संपत्ति छिपाने के आरोप में एक केस दर्ज कराया गया है। पूर्व राष्ट्रपति ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। ये केस तेल कंपनी पेट्रोब्रास में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। उधर ब्राज़ील की राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए न्याय मंत्री की तैनाती असंवैधानिक थी। अदालत ने मंत्री वेलिंगटन लीमा ए सिल्वा से 20 दिन में पद छोड़ने को कहा है। फ्रांस में हजारों लोगों ने प्रस्तावित श्रम कानून में सुधार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नए कानून के बाद नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी और कंपनियां ज्यादा लोगों की भर्ती कर सकेंगी। मार्से में प्रदर्शन कर रही एक महिला ने इस विरोध प्रदर्शन का कारण बताया।
On est l'avenir de demain et elle est en train de nous foutre en l'air notre avenir. Donc on retrouve pas notre place déjà nous en tant que jeunes dans cette société.
हम कल का भविष्य हैं और श्रम मंत्री मिरियम अल खोमरी हमारा भविष्य बर्बाद कर रही हैं। नौजवानों के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं बची है। इसके ऊपर ये कानून वो मंत्री लेकर आई हैं जो अभी ही सरकार में आई हैं। इसे कुछ महीने पहले तैयार किया गया था। वो कहती हैं कि उन्हें किसी से कुछ जानने समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारी भी सुनी जानी चाहिए। ये थीं प्रदर्शनकारी महिला नोरा कादेर, जो फ्रांस में नए श्रम कानून का विरोध कर रही थीं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सेना ने केमिकल हथियारों के एक एक्सपर्ट को पकड़ने का दावा किया है जो सद्दाम हुसैन के साथ काम करते थे और अब चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं। सुलेमान दाऊद अल अफारी नाम के इस शख्स को एक महीने पहले विशेष सुरक्षा बलों की छापेमारी में बंदी बनाया गया था। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति बराक ओबामा और बुजुर्ग हो चुके क्यूबा की क्रांति के नेता फिदेल कास्त्रो की संभावित मुलाकात से इनकार किया है। बराक ओबामा इस महीने राजधानी हवाना की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे। ओबामा के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेन रोड्स ने इस बात की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क की फेडरल अदालत ने यूएस एयरफोर्स के कर्मचारी को सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने का दोषी पाया है। तायरो पोग नाम के इस कर्मचारी को मध्य पूर्व में मैकेनिक पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कथित तौर पर तुर्की के रास्ते सीरिया चले गए। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मार्च की 10 तारीख और दिन गुरुवार और वक्त हो चला है 6:33:43। कार्यक्रम की शुरुआत अरब मुल्कों से यूरोप जा रहे शरणार्थियों की। यूरोप में प्रवासी संकट से जूझ रहे मैसेडोनिया ने कहा है कि वो ग्रीस से लगी अपनी सीमा से और प्रवासियों को अंदर नहीं घुसने देगा। मैसेडोनिया ने कहा है कि उसने उत्तरी बाल्कन रास्ते को भी बंद कर दिया है। मैसेडोनिया के इस फैसले के बाद करीब 13,000-14,000 प्रवासी मैसेडोनिया ग्रीस बॉर्डर पर जमा हैं और इनमें से अधिकतर मध्य पूर्व के सीरिया इराक इलाके के हैं। शिविरों में प्रवासियों के लिए काम कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक इससे प्रवासियों के बीमार होने का खतरा और बढ़ गया है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए अजय शर्मा से।
मैसेडोनिया ने कहा है कि वो अपनी सीमा से प्रवासियों को ग्रीस में नहीं घुसने देगा। इसका मतलब होगा कि उत्तर यूरोप में शरण चाहने वाले लोगों के लिए मुख्य मार्ग बंद हो जाएगा। इससे करीब 14,000 लोग प्रभावित होंगे, जिनमें ज्यादातर सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के हैं और ग्रीस की ओर मौजूद हैं। उधर आइडोमेनी शिविर में मौजूद डॉक्टरों ने कहा है कि यहाँ फंसे लोग सेहत से जुड़ी कई तरह की बीमारियों का शिकार हैं। आइडोमेनी में मेडिकल चैरिटी मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कई बच्चे फेफड़ों से जुड़ी बीमारी झेल रहे हैं जो शिविर में रहने की वजह से पैदा हुई है।
Yesterday we had again a 2 years old girl who came to our clinic who was in a very
कल फिर से हमारे क्लिनिक में एक 2 साल की बच्ची लाई गई जिसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। हमारे हिसाब से यहाँ कई बच्चे इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ काफी सीलन और धुआं है, इससे उनके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। ये थे मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स के प्रवक्ता क्रिश्चियन रेंडर्स के शब्द। रेंडर्स का कहना था कि माओं को बच्चों की पैदाइश के बाद शिविर में ही रहना पड़ रहा है।
We are sending women to the hospital. We refer them with an ambulance.
हम महिलाओं को अस्पताल भेज रहे हैं। हमने उन्हें एक एम्बुलेंस भी देने की मांग की है। हमने उन्हें बच्चों को जन्म देने के लिए पूरी मेडिकल सुविधाएं देने को कहा है, लेकिन वो अपने उन नवजात बच्चों के साथ वापस लौट आईं जो अभी सिर्फ 2-4 दिन के ही हैं। मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स के प्रवक्ता क्रिश्चियन रेंडर्स के शब्द। एक सीरियाई प्रवासी महमूद हसन ने कहा कि शिविर में बुरी तरह भीड़ होने की वजह से रहना मुश्किल हो रहा है और वहां रहने वालों की तबीयत बिगड़ रही है।
This is horrible. This is unbelievable. Unbearable, you know. They are bombing the country and they closing the border.
ये भयानक और असहनीय है। वो हमारे देश पर हमला कर रहे हैं और अपनी सीमाएं बंद कर रहे हैं। हम कहां जाएं? अगर कुछ भी कर सकते हैं तो कृपया हमारी मदद करें। हालात बेहद खतरनाक हैं। यहाँ टॉयलेट ना होने की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं। ये शिविर 14,000 लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ 1500 लोगों के रहने के लिए है। ये थे सीरियाई प्रवासी महमूद हसन जो शिविर में बुरे हालात के बारे में बता रहे थे। सीमाएं बंद होने की वजह से कहीं जाने में असमर्थ प्रवासियों में बेहद निराशा है। उनमें से कुछ ने आइडोमेनी में सीमाएं खोलने के लिए प्रदर्शन किया और इसके लिए जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से मांग की।
तो प्रवासी संकट बरकरार है, बता रहे थे अजय शर्मा। और अब बात पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आज़ादी समर्थक किताबों पर प्रतिबंध के खिलाफ भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों से लेकर आम लोगों तक सभी ने इस प्रतिबंध के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर सरकार की तरफ से दर्जनों आजादी समर्थक किताबों पर प्रतिबंध को लेकर भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों से लेकर आम लोगों तक सभी ने इस प्रतिबंध के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। आम लोगों और अलगाववादियों ने पाकिस्तानी सरकार की तरफ से इस तरह के प्रतिबंध को गैर जमहूरी कदम बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार को फौरी तौर इस तरह के फैसले को वापस लेना चाहिए और किसी के विचारों या ख्याल की आजादी पर किसी भी हाल में पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कश्मीर के अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक बताते हैं,
देखिए जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ताल्लुक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तानी आईन की इजाजत देता है, तो अगर क्या आप किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आपको को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप जो वॉइस ऑफ डिसेंट है पाबंदी नहीं लगाते, इसलिए हमें लगता है कि ये गौर जमहूरी अमल है और ये पाबंदी और उठानी चाहिए।
वही महाज राय शुमारी के चेयरमैन और अलगाववादी नेता आजम इनकलाबी कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों का दोस्त रहा है। उन्होंने BBC को बताया,
देखिए जमहूरियत और आजादी राय के इस दौर में हमारे दोस्त पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रहा है हमारे हक़-ए-खुदराय की हिमायत कर रहा है। इस जुदोजहद में मज़ामती तहरीक में मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इंडिपेंडेंस के हामी हैं, कुछ इलाके पाकिस्तान के हामी हैं, बल्कि कुछ हिंदुस्तान के इलाके भी हामी हैं। अगर हम इस तरह किताबों को बैन करते चले जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि एक सफोकेशन का माहौल पैदा होगा और इजहार राय का माहौल जो है तो बिल्कुल मादूम होगा, वो माहौल ही नजर नहीं आएगा।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक और गिलानी गुट भी कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं। कश्मीर की आम जनता कहती है कि उन्हें पाकिस्तान के इस फैसले पर बड़ी हैरानगी हुई है। रूफ अहमद और महराज अहमद बताते हैं,
गवर्नमेंट को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक इंसान बुक अगर लिखता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करता है, वो उसकी व्यक्तिगत राय होती है वो किस हिसाब से उसमें क्या लिखता है। अब उसके मानने वालों तक निर्भर है कि वो उसके आइडियोलॉजी तक कहाँ सहमत होते हैं कैसे नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी बुक्स पर बैन लगाया जाना अच्छी बात नहीं है। इसके जो खिलाफ है यहाँ के कश्मीरी जो है डेफिनेटली बात करेंगे, जो खासतौर पर राइटर समुदाय है वो भी इस पर बात करेगा।
देखिए कश्मीरी होके मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम सरप्राइज्ड कि इंडिया पाकिस्तान ने ऐसा डिसीजन लिया है कि आम चाहे मकबूल बर्ड की हो या किसी और की भी हो, जो भी बुक हो वो बैन करना पढ़ने वालों के लिए एक शौक है। पढ़ने वाला पढ़ता है, बुक्स के लिहाज से हमारी सब इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो किसी भी ऑथर की हो या किसी ने भी लिखी हो। ये तो अपना एक मेरे ख्याल में एक इंटेलेक्चुअल लिहाज से या पढ़ने वाले के एक रीडर के लिहाज से एक शॉकिंग न्यूज़ है हमारे।
जिन किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट की दो किताबें मैं कौन हूँ, जो खुद मकबूल भट्ट ने लिखी है, और मकबूल भट्ट लाइफ एंड स्ट्रगल जो कि शम्स रहमान ने लिखी है भी शामिल हैं। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
नमस्कार भारत। शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
तो बैंकों से करोड़ों रुपए के कर्ज लेने के मामले में विजय माल्या के बारे में कल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के बताया कि वो तो 2 मार्च को ही भारत छोड़कर जा चुके हैं। 2 मार्च को ही देश के 17 राष्ट्रीय बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की अर्जी दाखिल की थी। अटॉर्नी जनरल ने CBI के हवाले से कहा कि ब्रिटेन में विजय माल्या की काफ़ी संपत्ति है, इसलिए संभव है कि वो ब्रिटेन में हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनुमति दी कि माल्या को उनके वकीलों के जरिए नोटिस भेजी जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि बैंकों ने माल्या को कर्ज क्यों दिया जबकि वो डिफॉल्टर घोषित हो चुके थे और अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे थे। सुनिए प्रगति सक्सेना की यह रिपोर्ट।
किंग फिशर कंपनी को गुड टाइम्स का प्रतीक समझा जाता था। जैसे रंगीले और भड़कीले उनके उद्योग थे, वैसी ही विजय माल्या की शख्सियत भी। फिर अचानक वक्त पलटा और विजय माल्या देश के 17 बड़े बैंकों का कर्ज चुकाने में असफल यानी डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए। राष्ट्रीय बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज विजय माल्या पर बकाया है। आखिर ये नौबत क्यों आई कि बैंक अपने कर्ज की EMI ना मिलने पर भी माल्या को लगातार कर्ज देते गए? वरिष्ठ वकील सूरत सिंह।
देखिए ऐसा है कि विजय माल्या जी ने जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं उनसे लोन लिया है प्रोजेक्ट के लिए। यूजुअली बैंक जो हैं शॉर्ट टर्म के लिए बैंक लोन देते हैं, प्रोजेक्ट के लिए नहीं। तो वो लोन लिया और टाइम पे नहीं दिया। अगर EMI टाइम पे नहीं जाए तो जैसे किसी इंडिविजुअल की टाइम पे अगर नहीं EMI जाती है तो 3 इंस्टॉलमेंट के बाद उसको डिफॉल्टर माना जाता है। तो इनका तो करोड़ों का था, तो कायदे से तो ये विलफुल डिफॉल्टर बहुत पहले हो गए थे। अब इस तरह के जो हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन हैं, जिनको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उसके आधार पे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, तो लोन इन्होंने गवर्नमेंट के बैंक से ले लिया और समय पर नहीं दिया। उस केस में क्या होता है कि बैंक एक तो अपना लोन रिकॉल कर लेता है, दूसरे ऐसे में एसेट्स इनकी जो भी एसेट्स हैं वो फ्रीज हो जाती है, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। हमारे बैंकों में 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा इस तरह के विलफुल डिफॉल्टर हैं, जिसकी वजह से हमारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप में काफी स्ट्रांग है वो काफी चरमरा गई है।
माल्या ही नहीं, ललित मोदी और सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत राय पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने निजी हित के लिए राजनीतिक संपर्कों का फायदा उठाया। ललित मोदी विदेश में हैं और सुब्रत राय जेल में। विजय माल्या के केस में हजारों कर्मचारियों का वेतन और बैंकों की भारी राशि अटकी पड़ी है, तो इस केस का क्या हल हो सकता है? सूरज सिंह कहते हैं कि माल्या की मौजूदा संपत्ति को बेचकर इस राशि की भरपाई करना ही इसका एकमात्र उपाय हो सकता है।
इनका जो है पासपोर्ट इम्पाउंड किया जाए ताकि ये बाहर ना जा सके, वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इनकी असेट्स फ्रीज कर दी जाए, अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर चाहे तो बैंक एक रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके अनुसार सारी इनकी प्रॉपर्टी और असेट्स को लिक्विडेट करके जो भी पैसा आता है जो इनके क्रेडिटर्स हैं उनको दिया जाए, तो तो ये खुद लिक्विडेशन की एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अगर इनकी जो है इच्छा है लोगों की लोन को वापस करने की।
फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने बैंकों और माल्या दोनों से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। ऐसे में विजय माल्या की बंद हो चुकी कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों को भी राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
ये थी प्रगति सक्सेना। यहाँ उसे कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम चल सको तो चलो। जी हाँ, ये पंक्तियाँ हैं निदा फाजली की। लेकिन कल इन पंक्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कही। राज्यसभा भाषण में जब मोदी ने ये कहा तो इससे साफ जाहिर हो गया कि उनकी सरकार कभी तकरार से कभी मनुहार से अपनी बात मनवाने की भरसक कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था,
अब ये जगह ऐसी है जो अपर हाउस हमारा एक चैम्बर ऑफ आइडियाज है, यहाँ से देश को मार्गदर्शन मिले, दिशा मिले, और इसलिए दोनों सदनों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। दोनों सदन वस्तुतः उसी स्ट्रक्चर के भाग हैं और सहयोग एवं सामंजस्य की भावना की किसी भी कमी से कठिनाइयां बढ़ेगी और हमारे संविधान के उचित रूप से कार्य करने में बाधा खड़ी होगी। ये चिंता पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जताई। मैं आशा करता हूं कि हम पंडित जी की चिंता को महत्व दें।
तो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, लेकिन क्यों, बता रही हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की राजनीतिक मामलों की संपादक अदिति फडणीस।
मेरे ख्याल से यदि अंग्रेजी में कहा जाए तो ये प्रधानमंत्री की ट्रेडमार्क स्पीच थी। ट्रेडमार्क इसलिए कि उसमें उन्होंने तंज भी कसे थे, थोड़ा बहुत कटाक्ष भी किया था, भरपूर प्रहार भी किया था, लेकिन ये भी माना था कि कोशिश ये की थी कि कांग्रेस को बाकी विपक्ष से अलग थलग किया जाए, और कुछ हद तक ये करने में मेरे ख्याल से वो सफल भी हुए हैं।
उन्होंने व्यंग किया, सदन की कार्रवाई चलने दी, उसके लिए धन्यवाद भी दिया। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि 300 संशोधन आए हैं हमारे पास और अपील की कि संशोधनों को वापस लें। आपको क्या लगता है आगे किस तरह से ये लोग मैनेज कर पाएंगे सदन की कार्रवाई को?
देखिए, सच बात तो ये है कि उनसे थोड़ी चूक हो गई। उनको अच्छी तरह मालूम है कि राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है, और इसके चलते गुलाम नबी आजाद जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने एक संशोधन जो कि 94 मत से पास हुआ है उसको स्वीकार कर लिया कि राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में ये खेद जताया गया है कि सभी को उनके अभिभाषण में सभी को चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में कुछ था ही नहीं। तो एक तरह से यह आलोचना है सरकार की, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार लिखती है, कि इतनी बड़ी बात हो गई कि पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए मैट्रिक की न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य किया गया है और इसका कहीं उल्लेख नहीं है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, इसको लेके उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव किया और ये अमेंडमेंट जीत गया। तो मेरे ख्याल से ये सरकार से भी चूक हुई है। सरकार का एक आंतरिक CID सिस्टम होता है जिससे वो उनको धीरे धीरे पता चलता है कि विपक्ष अगले दिन क्या करने वाला है, और उनको पता ही नहीं चला। तो ये दूसरा साल है जबकि राष्ट्रपति अभिभाषण में अमेंडमेंट लाया गया है।
मोदी जी के भाषण से क्या कोई एजेंडा सेट होता है सरकार का?
देखिए, सच बात तो ये है कि मोदी जी ने कोशिश भरसक की, पुचकारा भी, प्यार से भी कहा, कटाक्ष भी किया, लेकिन कांग्रेस को चूंकि राज्यसभा में कांग्रेस विपक्ष का मत भारी है, इसीलिए कांग्रेस को अपना काम करना है। अब सरकार जितनी स्फूर्ति और जितनी समझदारी और होशियारी से अपना काम करती है उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये परिस्थिति की विपक्ष ज्यादा भारी पड़े सरकार पर, ये परिस्थिति आसानी से अभी इधर हाल में नहीं बदलने वाली है। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बहुत ही सौम्यता से कहा कि आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो संवैधानिक संशोधन वाला बिल है उसको पास कर दीजिए, एक तरह से विनती भी की, लेकिन पार्लियामेंट में और राजनीति में विनती करने से कुछ खास होता नहीं है, ये मेरा अनुभव है।
ये थी बिजनेस स्टैंडर्ड की राजनीतिक मामलों की संपादक अदिति फडणीस। और अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हम सबकी नजरें।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह आज मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। शाह के मुताबिक यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा छीनने से मुस्लिम समुदाय में निराशा पैदा होगी। आर्म्स एक्ट के एक मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आज बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान जोधपुर की अदालत में पेश होंगे। ये मामला 1998 में काले हिरण के शिकार से जुड़ा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अदालत ने कुछ दस्तावेजों की मांग के साथ पिछले 25 फरवरी को केस की सुनवाई स्थगित कर दी थी। शारदा चिटफंड मामले में आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी कोलकाता में सीबीआई के सामने पेश होंगी। 4 मार्च को उन्हें सीबीआई ने समन भेजा था। सीबीआई ने अपनी 6ठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नलिनी का नाम शामिल किया था। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उधर निजीकरण की कथित सरकारी कोशिशों के खिलाफ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी आज से 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं।
और अब एक खास रिपोर्ट। आज बीबीसी न्यूज स्कूल रिपोर्ट दिवस है, जिसमें 11 से 16 साल की उम्र के बच्चों को बीबीसी पर एक न्यूज रिपोर्ट बनाने का अवसर मिलता है। और इस बार दिल्ली के गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने हमारे लिए एक रिपोर्ट बनाई, जिसका विषय है दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। तो आइए सुनते हैं स्कूली बच्चों द्वारा बनाई गई ये खास रिपोर्ट।
नमस्ते, मेरा नाम शुभम है। मैं गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं पूर्वी दिल्ली के पुश्ता रोड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी वाहनों की आवाजाही हो रही है और आवाजाही की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, और प्रदूषण की वजह से आसमान का रंग भी साफ़ नहीं है, और तो और सूरज भी प्रदूषण के धुएँ की वजह से छिप चुका है।
नमस्ते, मेरा नाम आलिया है। मैं अपने साथ हवा को जांचने के लिए एक मशीन लाई हूँ। इसके अनुसार PM2.5 नाम के छोटे छोटे कणों की संख्या इस वक्त लगभग 150 से भी ज़्यादा है, जो कि सुरक्षा के दायरे से 6 गुना ज़्यादा है।
कुछ समय पहले सर्दियों में वायु प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर थी। कोहरे ने हवा के दूषित कणों को जकड़ रखा था, यहाँ तक कि हम में से कुछ को तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी।
इस बढ़ते प्रदूषण की एक वजह सड़क पर चल रही गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर हर दिन लगभग 1400 नई गाड़ियाँ जुड़ती हैं।
मेरा नाम नसीम है, मैं गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ। पिछले कुछ सर्दी के महीनों में मेरी क्लास में बच्चों की तबीयत काफ़ी ख़राब होती रही है। ज़्यादातर खांसी ज़ुकाम की शिकायत आई है, और कुछ बच्चों में आँखों में जलन महसूस होने की शिकायत भी आई है। और इस सब के कारण बच्चों का पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम हुआ है, उनमें जोश भी कुछ कम हुआ है, उनकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रह रही है। और मुझे लगता है कि वायु प्रदूषण इस चीज़ का एक मुख्य कारण ज़रूर है।
हम लोग एक तंग गली में खड़े हैं, जहाँ पर हमारा स्कूल है। यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिनमें से कुछ डीजल हैं, कुछ पेट्रोल की हैं, और माना जाता है कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों से हवा प्रदूषित होती है। हम मिले श्री मनोज राठौर से, जो डीजल की गाड़ी चलाते हैं।
जो भी गाड़ी मालिक हैं, उनको एक इशू ये तो है कि इससे हमारे को आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि डीजल का रेट कम है, पेट्रोल का रेट ज़्यादा है। लेकिन रेट न देखते हुए दूसरा हमारे को ये भी है कि हमारे को कम रेट वाला ऑयल यूज करने के बाद हमको गाड़ी का मेंटेन रखे, गाड़ी को समय पर सर्विस करवाएं।
हवा प्रदूषित होने के अन्य कारण भी हैं, जैसे कि जगह जगह बन रही इमारतों और सड़कों से बढ़ती धूल, कूड़े और बची खुची फसल के ढेरों की आग का धुआं।
हम प्रदूषण के प्रभावों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए डॉक्टर महाजन से मिलने आए हैं, जिनका अस्पताल हमारे स्कूल के पास है। हमारे विद्यालय के कुछ विद्यार्थी जब बीमार हो जाते हैं, तब वे इनके चिकित्सालय में इलाज करवाने आते हैं। आइए इनसे बात करें।
एयर पोल्यूशन से आँखों में सबसे पहले सूखापन आएगा, में मुंह में जाने से एयर पोल्यूटेंट्स टॉन्सिल सूज सकते हैं, फिर पोल्यूशन नीचे जाने से सांस की पाइप में और फेफड़ों में उनका स्पाज़म हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चों को बार बार निमोनिया होना या फिर खांसी होना या फिर उनका सांस फूलना, अस्थमा जिसे बोलते हैं, वो उसमें लैंड अप कर सकते हैं।
वायु प्रदूषण हमारी आगे वाली नई पीढ़ी पर भी प्रभाव डालेगा?
आने वाली पीढ़ी में जो बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कम हो जाएगा, साथ में उनको सांस की बीमारियों से जूझना पड़ेगा, जिसके लिए उनको स्कूल की अटेंडेंस में भी फ़र्क पड़ जाएगा और वो हमेशा दवाइयों पे या इनहेलर्स पे रहेंगे।
माना जाता है कि दिल्ली दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद ये रहने लायक ना हो।
दिल्ली सरकार इस समस्या के कई हल निकालने की कोशिश कर रही है, पर असर ज़्यादा नहीं दिख रहा। हम आए हैं बात करने दिल्ली सरकार की आतिशी मालिना जी से।
सरकार ने कई सारी चीज़ें की हैं, तो सरकार नई बसें ले रही है, सरकार मेट्रो को और बड़ा कर रही है, दूसरा सरकार ने एक ऑर्डिनेंस स्कीम चलाई थी, तीसरा हम दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं ट्रक कम से कम आए, क्योंकि ट्रक से भी बहुत पोल्यूशन होता है। उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ऐसा लगा है कि ऑर्डिनेंस चल सकता है और उसमें लोगों का सपोर्ट भी है। हमने पूरी दिल्ली में मोहल्ला सभाएं करी और लोगों से पूछा कि क्या वो ऑर्डिनेंस को चाहते हैं कि नहीं, और 80% लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं। इसलिए हम एक और राउंड ऑर्डिनेंस अप्रैल में करेंगे, लेकिन लंबे समय तक ऑर्डिनेंस को चलाने के लिए उससे पहले हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, और बसों की ज़रूरत है, मेट्रो में और कोचेज़ की ज़रूरत है।
अब जबकि दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधानों में जुटी है, दिल्ली वासियों का भी फ़र्ज़ है कि वे इस कोशिश में पूरा साथ दें।
कैसी लगी आपको बच्चों की ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो गया है और अजय अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी बताएं अजय।
जी, आज ज़्यादातर जो बड़ी खबर जो पहले पन्ने पर हैं उनमें जो प्रमुखता के साथ जो खबर ली गई है वो है कि विश्व संस्कृति समारोह जो यमुना किनारे हो रहा था वो समारोह जो है वो उस पर 5 करोड़ का जो है अर्थदंड लगाया गया है कोर्ट की तरफ से, उससे NGT की तरफ से, और कुछ आदेश भी दिए गए हैं कि एक तो ये कि DDA को पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नई दुनिया ने ये खबर रिपोर्ट की है। उसी तरह की एक दूसरी खबर है कि जो विजय माल्या हैं वो SBI समेत जो है 17 बैंकों ने जो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद उन पर 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज है और इसके बाद भी वो बाहर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, और सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। इस तरह की खबर दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर लीड बनाई है। और मोदी का जो राज्यसभा में जो भाषण रहा, अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने जवाब दिया, जो उसको तीसरी बड़ी खबर की तरह दर्जा दिया गया है। अमर उजाला अखबार में है, उसने हेडिंग ली है कि मृत्यु की तरह कांग्रेस को भी मिला है बदनाम न होने का वरदान। ये मोदी का एक बयान है कि PM ने जो है कटाक्ष किया, बदनामी से बचने के लिए कांग्रेस के पास गजब का विज्ञान, ऐसा कहा। एक अन्य खबर है कि अब कोलकाता में होगा भारत पाक मैच। ये जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर इसको जगह दी है। इसमें बताया है कि विश्व कप T20 में जो भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जो संशय था वो बुधवार को ख़त्म हो गया। हालांकि अभी भी जो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाया है कि वो अपनी टीम भेजे या नहीं। एक खबर हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर ली है कि जो भाजपा ने जो है पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र कुमार बोस को उम्मीदवार बनाया है।
बहुत शुक्रिया अखबार की समीक्षा के लिए अजय। और अब वक्त हो चला प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। यूरोपीय देश मैसेडोनिया ने कहा है कि वो प्रवासियों को अपनी सीमा से होकर ग्रीस नहीं जाने देगा। इस वजह से करीब 13,000 लोग ग्रीस की सीमा पर फंस गए हैं। लंदन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रमुख कमांडर ओमर अल शीशानी अमरीकी हवाई हमले में बच गए हैं। अमरीकी सेना ने केमिकल हथियारों के एक एक्सपर्ट को पकड़ने का दावा किया है जो चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं। ब्राज़ील में पूर्व राष्ट्रपति लुई इनेशियो लूला दे सिल्वा के खिलाफ हवाला और अपनी संपत्ति छिपाने के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। फ्रांस में हज़ारों लोगों ने प्रस्तावित श्रम कानून में सुधार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति बराक ओबामा और बुजुर्ग हो चुके क्यूबा की क्रांति के नेता फिदेल कास्ट्रो की संभावित मुलाकात से इनकार किया है। न्यूयॉर्क की फेडरल अदालत ने US एयरफोर्स के एक कर्मचारी को सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने का दोषी पाया है। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक 1 घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।